लोगों ने इस काम के लिए अपनी बेटियों के जहेज तक बेच दिए और इस तरह पैसा जमा करके ये कश्तियाँ खरीदी।
इन कश्तियों में से तीन तुर्कीने और बाकी हकूक इंसानी की तंजीमों की तरफ से खरीद कर दी गई और तय हुआ कि नौ कश्तियां रवाना होंगी।
फलस्तीन जाने से पहले इन लोगों की पहले से कुछ मंसूबा बनती थी। तो सैटेलाइट से कुछ पता चला कि इस कश्ती में गजा के लोगों के लिए इमदाद जा रही है।
मैं तैयार था और मैंने अपने दोस्तों से चलने की इजाजत मांगी और घर वालों से भी।
बाईस मई को अंतालिया चला गया।
शहादत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए शहादत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है।
सारी दुनिया को ये पता है कि गजा के अतराफ का पानी फलस्तीन के लिए है। अक्वामे मुत्तहिदा भी यही कहती है कि ये पानी इसराइल के लिए नहीं है। इस तरफ तवज्जो रहे कि सहयोनी हुकूमत ने इसको जबरदस्ती अपने कंट्रोल में किया है और किसी को यहाँ दाखिले की इजाजत नहीं। हम इसको कबूल नहीं करते। हम इंसानों की मदद के लिए इन कश्तियों को वहाँ भेज रहे हैं।
ये इमदाद तुर्की की तरफ से नहीं थी, अलबत्ता तुर्की की आवाम ने इस काम में बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि ये एक बैन अल-अक़वामी काम था।
हमने रवानगी से पहले इन इमदादी कश्तियों के मुतालिक पहले तुर्की और फिर तमाम दुनिया में ऐलान कर दिया और एक आलमी इमदाद का प्रोग्राम बनाया इस काम के लिए।
इंडोनेशिया और मलेशिया से, अफ्रीका और यूरोप और बहुत से ममालिक से एनजीओज और दीगर शख्सियात ने इस काम में मदद दी।
तुर्की में हर तरफ गजा के लोगों की मदद के लिए कई तरह के प्रोग्राम किए गए। मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम बनाए और यहाँ तक कि खाने तक बनाकर भेजे। इस काम की मदद के लिए सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हत्ता के लोगों ने अपनी बेटियों के जहेज बेचकर इन कश्तियों को खरीदने के लिए पैसा दिया और ये के इन कश्तियों को खरीदने के लिए छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया।
ज्यादातर कश्तियों के मुसाफिर तुर्क थे।
बहुत ज्यादा इमदाद आई और हमने कश्तियाँ खरीदी।
तीन कश्तियाँ खरीदी जिसमें दो कश्तियाँ माल बरदार और तीसरी कश्ती मुसाफिर बरदार मावी मारमरा थी।
इन कश्तियों में से तीन तुर्की और बाकी एनजीओस की तरफ से दोस्ताना तौर पर खरीदी गई और तय ये पाया कि नौ कश्तियां जाएंगी।
हर कश्ती मसलाए फलस्तीन के लिए खरीदी गई और 36 ममालिक की तरफ से भरपूर मदद का जवाब आया।
कश्ती के मुसाफिरों में मुख्तलिफ किस्म के अफराद शामिल थे।
कुछ माली इमदाद देकर और कुछ खुद कश्ती में रहकर मदद करना चाहते थे। इस काम के लिए बड़े लोग जमा हो गए थे। हत्ता के इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई कि आखिरकार हम मजबूर हो गए कि कुछ लोगों की हमें छाटी करनी पड़ी।
चलने की तारीख तय हो गई और प्रोग्राम ये बना कि कब्रस के साहिल पर सब जमा हो जाएं।
22 मई को इस्तांबुल से रवाना हुए और 25 मई को बाकी मुसाफिरों के साथ अंतालिया में जमा हो गए।
हमारा ये प्रोग्राम इस्तांबुल में बना और वहाँ से ही हम रवाना हो गए। हमने रवानगी से 3 माह पहले कोई चीज नहीं छुपाई और दुनिया के तमाम लोगों में ऐलान कर दिया कि देखो हम जा रहे हैं। इसराइल कह रहा था कि हम तुम पर हमला करेंगे, लेकिन हमने लोगों से कहा कि अगर दुनिया को मसाइल से बचाना चाहते हो तो इसराइल को मजबूर करो कि वो गजा का मासरा खत्म करे, लेकिन दुनिया समझी कि हम कह रहे हैं करेंगे नहीं, वो समझे कि हम डर रहे हैं, लेकिन हम निकल पड़े। खुदा सयोनियों को जजा दे कि वो बगैर सोच विचार के आगे बढ़े और खुले समंदर में रात की तारीकी में हम पर हमला किया।
जिस वक्त हम इस सफर के लिए मंसूबा बंदी कर रहे थे, हमें अंदाजा था कि इसराइल किसी न किसी तरीके से हमारे काम में मदाखलत कर रहा है और जराए इब्लाग के जरिए झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। हमने इसी बुनियाद पर मंसूबा बंदी की। सबसे पहले हमने ये किया कि कश्ती के मुख्तलिफ जगहों पर लाइव कैमरे लगा दिए ताकि हर चीज को दुनिया देखे और कोई भी वाकया दुनिया से छुपा ना रहे, सब वाज़ह हो जाए। हम ये चाहते थे कि सहयोनियों की दहशतगर्दी दुनिया पर आए रास देखे।
हमने एक जमीनी काफिले के जरिए इस काम का तजुर्बा भी किया और काम करने के दौरान समुद्री काफिले को हमने अपने जहन में बिठा लिया। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि जमीन पर गाड़ी रुकने पर वीडियो भेजना आसान होता है क्योंकि गाड़ी जमीन पर गैर मुतहरिक होती है, लेकिन कश्ती जो हरकत में है इसमें ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है और लाइव कवरेज भेजना भी बहुत मुश्किल होता है और ये सब तुर्की तक पहुंचाने के वसाइल भी हमारे पास मौजूद नहीं थे।
रवानगी से कबल एक ग्रुप लाइव कवरेज के लिए मुंतखब कर लिया गया। ये काम एक मखसूस तरीके से करना था और वीडियो भेजने के लिए सैटेलाइट एंटीना कश्ती पर नसब करना था।
इस काम के लिए हमने तकरीबन 2 महीने तक तहकीक की और हमने अपनी जरूरत का सामान स्विस कारखानों से हासिल किया था और उसे चेक किया और उसके एंटीना के जरिए मुख्तलिफ काम हमने सर अंजाम दिए और इस जांच पड़ताल में बहुत से तुर्की के इंजीनियर दोस्तों ने भी हमारे साथ मिलकर काम किया।
हम 10 आदमियों के ग्रुप ने ये काम तजर्बाती तौर पर अंजाम दिया टेस्टिंग के तौर पर, और पहले भी बहुत से तजर्बाती काम अंजाम दिए क्योंकि ये काफिला जो था वो जमीनी न था। इस काम में बहुत सी दुश्वारियां थी। आखिरकार एक कश्ती ने हालत हरकत में वीडियो भेजी और ये एक एंटीने और मजबूत सिस्टम के जरिए ही मुमकिन था।
खुदा का बहुत करम और बहुत बड़ा एहसान है कि जब कश्ती अपनी जगह तक पहुंची तो हम इस काबिल थे कि बराह रास्त तुर्की से चलती हुई कश्ती से राब्ता रख सकते थे।
Burada çocuk evleri hazırladıklarını, hatta klimalı çocuk evleri hazırladıklarını özellikle belirtiyor.
İnsanlarda herhangi bir korku yok. Yani dediğiniz gibi İsrail herhalde bu gemiye...
Böyle bir hata yapabilir mi? Yapabilir ama...
Both the boats coming from Europe and our boats coming from Turkey.
Call my number, handphone ya.
और जब हम इस्तांबुल के लिए रवाना हुए तो अपने सिस्टम को टेस्ट करना शुरू किया। जिस वक्त किश्ती रुकी हुई थी सिस्टम अच्छा चल रहा था और बराह रास्त रब्ता बरकरार हो गया था, लेकिन कम वक्त की वजह से हम ये सारे टेस्ट टेक्निकली तौर पर पूरे नहीं कर सके। लेकिन अंतालिया में टेस्ट के लिए हमारे पास वक्त था, फिर हमने ये टेस्ट किए।
अंतालिया में हमारे दोस्त इंजीनियर साहिबान भी आ गए थे।
इस्तांबुल से निकलने के 100 मीटर के बाद ही सिस्टम में मसला होने लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई।
अंतालिया में हमें फुर्सत मिली कि हम अपने सिस्टम को ठीक करवा सकें।
इसी वजह से हमने उन इंजीनियर्स को कॉल करी और उनको बुलवाया जिनसे हमने इस सिस्टम को खरीदा था। उसके बाद हमारे पास वो इंजीनियर्स आ गए और उन्होंने आकर हमारी ये मुश्किल आसान कर दी और अंतालिया से हमारा बराह रास्त वीडियो रब्ता बरकरार हो गया।
इसके बाद अंतालिया से बहुत सारे सहाफी हजरात हमारे साथ कश्ती में सवार हुए जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से था। इनमें से बहुत से सहाफी हजरात जो थे वो मलेशिया से थे और कुछ का ताल्लुक वेनेजुएला से भी था। जहाँ तक मुझे याद है और मैं गलत नहीं कह रहा तो वहाँ पे तकरीबन 60 लोग मौजूद थे और इन सब सहाफी हजरात को इंटरनेट की सर्विस भी मुहैया की गई थी और ये सब इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे, हत्ता के जिस वक्त हमला हो उस वक्त भी वो इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल कर सकें और साथ ही बराह रास्त वीडियो कवरेज भी भेज सकें। इसके जरिए लम्हा बलम्हा की खबरें और तस्वीर वो अपने इदारे को भेज रहे थे।
कश्तियाँ 40 अफराद के साथ इस्तांबुल से रवाना हुई और बाकी मुसाफिर अंतालिया से हमारे साथ हुए। फलस्तीन जाने से पहले इन लोगों की पहले से कुछ मंसूबाबंदी थी, तो सैटेलाइट से कुछ पता चला कि इस कश्ती में गजा के मजलूम लोगों के लिए इमदाद भेजी जा रही है।
मैं तैयार था बिल्कुल जाने के लिए। मैंने अपने घर वालों से, दोस्तों से और दिगर अफराद से इजाजत मांगी और अंतालिया चला गया।
22 मई को अंतालिया चला गया।
अंतालिया में मुसाफिरों को बेहतरीन कयामगाह दी गई। दुनिया भर से सैकड़ों मुसलमान और दिगर लोग आए हुए थे।
बहुत खूबसूरत मंजर था, सब भाई भाई के मिसल थे, मुख्तलिफ सकाफतों से आशना हुए।
बहुत खूबसूरत मंजर था क्योंकि मुख्तलिफ सोच रखने वाले और मुख्तलिफ जगहों के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। इन सब का मकसद सिर्फ एक था।
şeye katıldım tabii ki.
कश्ती में ईसाई यहूदी और बहुत से लोग थे और सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, दुनिया के मसाइल पर तबादला ख्याल कर रहे थे और सब मुत्तफिक थे कि सहयोनी दुनिया के लिए खौफनाक बला है।
कश्ती पर सवार हुए और वहां से रवाना हो गए।
कब्रस के साहिल पर सब कश्तियां जमा थी। 9 कश्तियों में से 6 कश्तियां सफर पर रवाना हुई, 3 नहीं हुई।
किश्ती में हर पेशे से, हर मजहब से, हर सकाफत से और हर जबान से ताल्लुक रखने वाले लोग नजर आ रहे थे। से बहुत ज्यादा घुल मिल गए और कश्ती में मुख्तलिफ मशगलों में मसरूफ नजर आए। इस कश्ती का नाम था मावी मारमरा और कुछ लोग इस्लामी तराने पढ़ते जा रहे थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे को एहतराम से सुन रहे थे। जिस वक्त उर्दू नहीं बात करता था तुर्क सुनता था और जब तुर्क बात करता तो अंग्रेज सुनता था। सब लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ थे और कलबी लगाओ इनके अल्फाज खूबसूरत और मनाजिर देखने वाले थे। एक वाकया बड़ा दिलचस्प है, मैं चाहती हूँ कि आपको सुनाऊँ। इस कश्ती में एक ईसाई था जिसे कुछ मुश्किल हो रही थी, हमें महसूस हो रहा था। जिस वक्त मुसलमान नमाज जमात के लिए खड़े हुए और सफरें बनाई तो उसके अंदर एक बेचैनी से नजर आ रही थी कि मैं मुसलमानों के दरमियान क्यों नहीं खड़ा हूँ।
सालों से मेरा दिल जो चाहता था और इमाम खुमैनी ने भी इस बात की काफी ताईद की थी, यानी इत्तेहाद बैनुल मजाहिब और वहदत, बहुत से मजाहिब का एक जगह जमा होना, और ये इत्तेहाद की बड़ी मिसाल थी जो ये इस कश्ती में हमें नजर आ रही थी। और जिस वक्त हम मजाहिब के दरमियान वहादत की आरजू करते थे, वहादत इंसानी को खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मुख्तलिफ मजाहिब और मुख्तलिफ सियासी फिक्र रखने वाले लोग एक जगह जमा हुए थे और इन सब का हदफ एक ही था, पर वो हदफ क्या था? वो हदफ था गजा के लुटे हुए और बेसहारा लोगों की मदद करना।
मीडिया के लोग और सहाफी हजरा पूरी मेहनत से दुनिया को रिपोर्ट बनाकर दे रहे थे और खबरें दुनिया में जा रही थीं। सबको पता लग रहा था कि कश्ती में क्या हो रहा है।
उर्दू के दारुल हुकूमत में जनाब बुलंद के साथ मुलाकात की और उनके साथ एक बराह रास्त टीवी प्रोग्राम भी बना रहा था। वहाँ से मैं ये समझा कि एक कश्ती जो है वो गजा की तरफ रवाना की जाएगी और ये कश्ती एक मुहिम पे जा रही है, और फिर किस्मत से मुझे भी इस मुहिम में शामिल होने का मौका मिला जिसका नाम था मावी मारमरा।
ہر روز تقریباً 100 پروگرام رپورٹر ترکی کے ٹی وی کے ذریعے اور دنیا کے دوسرے ٹی وی چینلز کے ذریعے، مثال کے طور پر جنوبی افریقہ کا ٹی وی چینل، وینزویلا کا ٹی وی چینل، اسپین کا ٹی وی چینل اور الجزیرہ ٹی وی، یہ تمام چینل پروگرامز پیش کر رہے تھے۔
اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ صحافی غیر جانبدار ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ مگر میں نے یہ دیکھا کہ صحافی مظلوم کے قریب تھے اور ظالم سے دور تھے۔ ہم مظلوم عوام کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی بھلائی اور ان کے حق کے لیے کام کرتے ہیں۔ صحافی وہ ہے جو عوام کی خدمت کے لیے کام کرے۔
مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یقیناً مظلوموں کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہ مظلوم چاہے کہیں بھی ہوں، دنیا بھر میں، فلسطین کے ہوں یا دنیا کی کسی بھی جگہ سے ان کا تعلق ہو، ایک صحافی کو بلا امتیاز ان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ ہم اس خبر کو پوری دنیا تک پھیلائیں۔ یہ ہے دراصل ایک صحافی کا اخلاقی فرض۔
یہ کشتی کیسی کشتی ہے اور اس کشتی میں آخرکار کون لوگ ہیں اور یہ کس لیے اور کہاں جا رہے ہیں؟ یہ خبریں ہم لمحہ بہ لمحہ دنیا کو پہنچاتے رہے۔
یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ انسان اپنے وجدان کے ساتھ غذا کے وحشی محاصرے کو توڑنے کے لیے مل جل کر کام کریں، اور اس اہم خبر کو دنیا تک پہنچانے کا سہرا صحافیوں کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مہم میں ساتھ دیا اور اس کشتی میں سوار ہوئے۔ جس وقت انسان ایک بیدار وجدان کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو ہم ان خبروں کو منتشر کرتے ہیں، اور میڈیا کا اخلاق اس بات کو ہمارے کاندھوں پر ڈالتا ہے۔ اور خدا کی مہربانی سے میں اس کشتی میں موجود تھا اس کام کو کرنے کے لیے۔
ہم آزاد سمندر کے ذریعے جا رہے تھے، اسرائیلی جنگی کشتیاں ہمارے ارد گرد تھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر پر ہم سے رابطہ کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے غزہ جا رہے ہیں۔
معافی مانگ رہا، یو آر اپروچنگ این ایریا آف ہاسٹیلٹی وچ از انڈر اے نیول بلاکیڈ۔
اس رات تقریباً 10 بجے اسرائیلی کشتی سے ہمارا رابطہ ہوا، اور دور سے ہم نے اسرائیلی کشتی کو اپنی طرف آتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو رابطہ وائرلیس پر ہوا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اپنا تعارف کرا۔ کشتی کے کپتان نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ کشتی ماوی مارمرا ہے اور ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس میں 600 مسافر سوار ہیں جو کہ عام لوگ ہیں۔
حملے کی رات تقریباً 10 بجے انہوں نے ہماری ٹی وی فریکوینسی کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔
One is behind the Daphne, and there are 3 coming this way, and there's one farther away, okay?
What about the drone?
So they are pressing us?
They are
pressing us towards?
They are not pressing us, they are just coming closer and closer.
Did they contact us?
No contact, no verbal contact.
حملہ کرنے سے پہلے ہمارے رابطے کو سیٹلائٹ کے ذریعے منقطع کرنا شروع کیا۔ یہ وہ رابطہ تھا جس کے ذریعے ہم ویڈیو بھیج رہے تھے، اور اسرائیل نے آواز کی لہروں کے ذریعے ہمارا رابطہ دنیا سے کاٹنا چاہا۔
Hey
Where is the number of the man? Is that the way? Please look at your phone. You must be mad.